ओम शांति। तो ये मुरली है 28 सितंबर 69। इस मुरली में बाबा ने कथनी करनी जो पूरे कोर्स का सार है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है, क्योंकि माताओं की भट्टी चल रही है और एक सेवाओं की जोर शोर से शुरुआत हो जा रही है। जैसे कि तो बाबा उन सेवाओं को तीव्र गति से कैसे मूर्त रूप दे सके, उसके लिए प्रैक्टिकल में कथनी करने के लिए जो भी भट्टी करने आए हैं उनको तैयार कर रहे हैं। तो इसमें बाबा ने बहुत सारी बातें बीच बीच में बताया है कि अभी कहने से सेवा नहीं होगी, अभी लोग प्रैक्टिकल में चलन देखना चाहते हैं और उसमें कौन कौन सी बाधाएं आती हैं उसके बारे में बताया। सच्चाई सफाई नहीं है तो जो आप कहते हो और नहीं करते हो तो लोग मानते नहीं, उलाना देते हैं। और सच्चाई किसे कहते हैं और सफाई किसे कहते हैं, और सर्विस में सच्चाई सफाई कैसे लानी है उसकी निशानियां बताइए, जो सच्चे होंगे उनकी निशानी क्या है। और फिर अपने में निश्चय नहीं रखते, शक क्यों होता है उसके बारे में बताया, संशय क्यों रखते हैं, संशय रखते हैं तो सफलता भी वैसे ही मिलती है। फिर भट्टी में जो बदलाव किया परिवर्तन किया तो वो भी दिखाई देना चाहिए। और अमृत वेले बाबा कई बच्चों से मिले जो साकार में साथ थे, उनका पुरुषार्थ भी थोड़ा अच्छा चला। और फिर बलि चढ़ने वालों को क्या मिलता है और सदा सुहागिनी के बारे में चर्चा की है, तो ये सारी अलग अलग बातें हैं। वैसे भी हम देखते हैं तो प्रैक्टिकल में सारे ज्ञान का सारी ये कथनी और करने में समानता। तो यहाँ तो बाबा पहले मुलाकात कर रहे हैं, बाबा पूछ रहे हैं सभी किस रूप में बैठे हो मुलाकात करने के लिए, स्नेह रूप में, शक्ति रूप में या अव्यक्त रूप में। बाप से मुलाकात तो कर ही रहे हो, लेकिन इन तीनों रूपों में से किस रूप में मुलाकात कर रहे हो और सारे दिन में किस रूप में मुलाकात करते हो, कितना समय किस रूप में मुलाकात करते हो और इन तीनों रूपों से कौन सा श्रेष्ठ है, स्नेह, शक्ति और अव्यक्त। तो बाबा ने ये प्रश्न पूछा लेकिन कहा स्पष्ट बाद में करेंगे, क्योंकि जो भट्टी की है तो बाबा वो भट्टी की रिजल्ट देखना चाहते हैं और उस रिजल्ट के अनुसार सेवाओं के क्षेत्र में जो भी उतरेंगे उनको भी ट्रेनिंग, जो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग ली है सबने, बाबा ने कहा कि भट्टी की है माना एक्स्ट्रा ट्रेनिंग ली सभी ने, अतिरिक्त प्रशिक्षण, एक्स्ट्रा ट्यूशन। तो भट्टी में क्या क्या किया वो पूछा कि भट्टी में बहुत सारे पॉइंट निकाले, भिन्न भिन्न पॉइंट निकाले। तो बाबा ने कहा कौन से ऐसे पावरफुल पॉइंट निकाले हैं जिन पॉइंटों को अमल में लाने से विघ्न एक सेकंड में दूर हो जाए। तो सभी ने सुनाया अपने अपने पॉइंट। तो भिन्न भिन्न जो भी पॉइंट सुनाए बाबा ने कहा सभी अपना अपना अनुभव लिख कर भेजे, फिर उन सबको इकट्ठा करें, क्योंकि इकट्ठा करने से जो सार निकलेगा वो फिर सबके काम में आ सके। फिर बाबा एक एग्जाम्पल दिया, जैसे कोई दवाई निकालते हैं या इन्वेंशन करते हैं तो उसको पहले किसी को देते हैं तो फिर उसका जो रिजल्ट निकलता है फिर उसका सभी को फायदा होता है। तो यहाँ भी भिन्न भिन्न जो पॉइंट निकले हैं बाबा ने कहा उसका सार दो बातों में सुनाओ। दो बातें कौन सी, कथनी और करनी, याद और सेवा, ऐसे दो सारी बातें, रूप और बसंत। और दो दो बातें कौन सी होंगी, याद और सेवा, ज्ञान और योग, बाप और वर्षा, जी सच्चाई सफाई, अल्फा और बे, चाल चलन, हाँ एक ही हो गया दोनों, बाबा और ड्रामा, बाप और बच्चे, न्यारा और प्यारा, आना और जाना, गो सुन कम सुन। हाँ ये भी ठीक है, गो सुन और कम सुन, बार बार ऊपर ड्रिल करते रहो, सकारी निराकारी सकारी निराकारी। हाँ जी मन मना भव मध्य जीव, तो ऐसे दो सारी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन इस भट्ठी में जो सार निकला, कथनी और करनी में समानता। तो बाबा ने कहा अगर कथनी करनी और रहनी इन तीनों में समानता है, कथनी करनी और रहनी मना आचरण तीनों अगर इक्वल है तो बहुत सारे फायदे होंगे। कहते तो हो आप, लेकिन अब ये प्रैक्टिकल करके दिखाना है। तो इन तीनों को करने से क्या क्या हो जाएगा, बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था, तीनों को अगर करेंगे तो कर्मातीत अवस्था जास्ती जल्दी आएगी। और जो आप कहते हो मेहनत करते हो सेवा में, वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया वाले प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं। आप अपने को कहते हो कि हम ब्रह्मा कुमार हैं, ब्रह्मा कुमारी हैं, बाप के आज्ञाकारी हैं, मददगार हैं, तो अब ये प्रैक्टिकल करके दिखाना है। तो मददगार कौन सा, कथनी करने में समानता, कहना अर्थात करना, जो हम कह रहे हैं वो करके दिखाना है। क्योंकि बाबा ने कहा आज तक तो बहुत कहते आए हो दुनिया वालों को क्या कि बेकार बुरी चीज है, लेकिन बाबा ने बच्चों को ही सर्टिफिकेट दिया कि आप घर गृहस्थ में रहते हुए भी न्यारे नहीं रहते हो। ऐसे और भी बहुत सारी बातें हम कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो, लेकिन सारे दिन में खुद कहाँ रहते हैं। बाबा ने कहा खुद को समझा नहीं और चले पाठ पढ़ाने, ये किसी और मुरली में। तो ये भी देखना है कि जो हम कहते हैं है जी, अब नहीं तो कब नहीं, ऐसे बहुत सारी बातें हैं, अब नहीं तो कब नहीं, या समय अभी बहुत थोड़ा है, तो क्या हम समय को लेकर सचेत हैं। आत्मा की बात कहते हैं, परमात्मा की बात कहते हैं, ज्ञान की बात कहते हैं, तो ये सारी चीजें क्या अपने ऊपर लागू होती हैं। तो जो कहना है वो करना है, तो कहने करने में जब समानता होगी तो एक तो कर्मातीत अवस्था में जल्दी हो जाएगा, जल्दी नजदीक आ जाएगी, और जो आप कहते हो दूसरों को करना सहज हो जाएगा, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत जास्ती नहीं होगी। और तीसरा वो उलाने देते हैं कि जो आप कहते हो करते तो हो नहीं, तो वो उलाने समाप्त हो जाएंगे, और उलाने समाप्त होने से क्या बन जाएंगे आप, अल्लाह अर्थात ऊंच बन जाएंगे। तो यहाँ ये बात हुई पूरी। फिर इसके बाद इस सेवा में बाधा क्या चीज आती, बाधा क्या है, तो वो कहा कि खौफनाक, सबसे खौफनाक कौन है जिससे सभी डरते हैं। तो इसमें दुनिया की बात तो दुनिया में रही, दुनिया वाले खौफनाक वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ के जो है अंदर एक बाहर दूसरा, जो दुनिया भी खौफनाक है वो तो अंदर बाहर एक ही होते दोनों एक प्रकार से हम देखे तो। जैसे वो कहते हैं धमकी देते तो करके दिखा भी देते हैं वो लोग, लेकिन यहाँ की खौफनाक अलग चीज है, बाहर से कुछ दिखेगा अंदर से कुछ। जैसे कि कल मुरली में बता रहे थे ना शीलूरन, बगुला एक टांग पर खड़ा होता है, जैसे कि मैं बहुत ही योगी हूँ लेकिन उसकी आंख कहाँ होती है, मछली के ऊपर। आप देखा होगा नक्की लेक में, कभी देखेंगे तो बड़े प्यार से बैठा होगा, जैसे बहुत भोला भाला बेचारा, और तुरंत उड़ के जाएगा और झील के अंदर से मछली ले आएगा तुरंत। तो अंदर एक बाहर दूसरा, अगर ये है तो बहुत खौफनाक है, जिससे सभी डरते हैं और उससे सभी दूर दूर रहते हैं, उससे कोई स्नेह नहीं करता है। तो बाबा ने कहा भी सच्चाई सफाई नहीं है, तो सच्चाई सफाई के ऊपर भी बाबा ने फिर यहाँ प्रकाश डाला। हाँ वो जो खौफनाक है वो परनिंदक से भी ज्यादा खतरनाक है, हानिकारक है। तो सच्चाई क्या है और सफाई क्या है, तो बाबा ने कहा यह भी बहुत गुह्य रहस्य है। सच्चाई अर्थात जो हम संकल्प करते हैं वो ही वर्णन करें, जो सोचते हैं वो ही वर्णन करें, जो कहते हैं वो ही कर्म करें। तो सोचना जो सोचेंगे वो ही तो बोलेंगे, लेकिन बाबा का भाव क्या है, यहाँ बनावट ना हो उसमें। कई बार ऐसा होता है कि कोई पुरुषार्थ हम कर रहे हैं पुरुषार्थ में, और बाहर से तो हम दिखा रहे हैं कि हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अंदर से थोड़ी इच्छा हो रही है, सोच हमारे अंदर कुछ और है लेकिन व्यक्त हम कुछ और कर रहे हैं, तो ये भी सच्चाई नहीं है। तो संकल्प में भी हमारी बाबा ने कहा सच्चाई हो, जो संकल्प करते हैं वही वर्णन करना है, जो कहते हैं वही कर्म मिलाना है, ये है सच्चाई। और सफाई, सफाई अर्थात किसी भी प्रकार के विकर्म का किचरा अंदर में न रहे, कोई भी पुराने भाव स्वभाव जो भी हमारे पुरुषार्थ में बाधक बनते हैं उनसे भी मुक्त, इसको कहेंगे सफाई। तो सफाई, जो सफा साफ दिल वाला होगा वो सच्चा भी होगा, वो कभी छिप नहीं सकता है, इसलिए कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी। और सत्य से संबंधित कौन कौन सी बातें, सच तो बिठो नच और सत्यम शिवम सुंदरम, साफ दिल मुराद हासिल, सच्चे दिल पर साहब राजी, सच्चे की नाव हिलेगी डूलेगी लेकिन डूबने नहीं देंगे, डूबेगी नहीं, और सत्य के सूर्य को असत्य के बादल कभी छिपा नहीं सकते, सत्य की विजय होती है, सत्य में विजय थे। तो ये सारी सत्य से संबंधित बातें हैं। तो जो सत्य होगा, जो सच्चा होगा, वो कभी छिप नहीं सकता है, कितने भी छिपाने की कोशिश करे, मिट्टी में जो हीरा है वो अपनी चमक नहीं छोड़ेगा, उसकी चमक तो रह ही रहेगी। लेकिन इसमें कई बच्चे ऐसा भी समझते हैं कि हमें तो कोई जानता नहीं है, समझता नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा अगर कोई सच्चा है तो वो छिपेगा नहीं। ये भी समझना है अपने आप को, ये भी समझना कि मुझे कोई जानता नहीं है, मैं तो सच्चा हूँ, ये भी सच्चाई नहीं है। सच्चा होगा वो सबका प्रिय होगा। और कोई बच्चे ये भी समझते हैं कि हम तो नजदीक नहीं है, प्रख्यात नहीं है, चाहे वो बड़ों के चाहे बाप दादा के, तो गुप्त है, गुप्त पुरुषार्थ चल रहा है। लेकिन बाबा ने कहा अगर बाप के नजदीक है तो सबके नजदीक है, और सबके नजदीक सबका प्रिय भी है, और सबसे पहले वो बाप का प्रिय होगा, दैवी परिवार का प्रिय होगा, तो वो शिफ्ट नहीं सकता है, सत्य अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा, स्वयं सिद्ध है वो, सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसको सिद्ध करने के लिए जिद नहीं, सभ्यता चाहिए। और दूसरी मुरली में था, डेट भाई साहब बता देंगे उनसे पूछ लेना बाद में वो ढूंढते रहेंगे अभी तो यहाँ ये बात पूरी हुई सच्चाई सफाई की, पुराने, हाँ यहाँ फिर बाबा ने कहा अभी पुराने सच्चाई अर्थात पुराने संस्कार तो क्या, संकल्प भी नहीं, पुराने संस्कार भी न रहे, लेकिन संस्कार तो मोटी चीज है, अभी संकल्प रूप में भी सच्चाई चाहिए। और संकल्प रूप में सच्चाई अर्थात जो कहना है वो अनादि आदि में आत्मा परमात्मा और ड्रामा,
और कल जैसे बोला बाप का संकल्प वही मेरा संकल्प, वो समर्पण बुद्धि कर बोला
जी, क्या किया नहीं उसका विस्तार नहीं किया। फिर आगे बाबा ने कहा कि जो ऊपर एक बात और छूट गई है, जो सच्चे होंगे वो दैवी परिवार के प्रिय होंगे, और कोई उनको ऐसी नजर से नहीं देखेगा, ऐसी माना कोई हीन भावना की नजर से नहीं देखेगा, उनकी नजर में वाणी में चलन में परिपक्वता होगी, वो खुद ना डगमग होंगे ना दूसरों को डगमग होने देंगे, माना उनका जीवन एक आदर्श मुहूर्त होगा। फिर उसके बाद बाबा ने कहा यहाँ अपनी मनसा वाचा कर्मणों को चेक करो, अपने को कहलाते क्या हो, टाइटल क्या देते हैं बाप दादा अपने आपको, स्वयं को, बच्चों को, सर्विसेबल। तो जो सर्विसेबल है, मनसा वाचा कर्मणा सर्विसेबल हो, जो सर्विसेबल होंगे वो हर सेकंड सर्विस करेंगे, सर्विस के बिना उनकी जीवन ही नहीं रहेगी। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों में सर्विसेबल, केवल भाषण देना सर्विस नहीं है या समझाना ही, ये सिर्फ सर्विस नहीं है, लेकिन अपने चलन से भी है, हर सेकंड सर्विस हो, ऑलराउंड सर्विस, जैसे चिमन चाचा जी, चिमन भाई। तो बाबा ने कहा हर सेकंड चेक करो सर्विसेबल है या कहीं डिसर्विस तो नहीं हो रही है, जब नाम ही सर्विसेबल है तो कर्म भी ऐसा होना चाहिए। इसलिए जो कहना है वो करना है, अगर ये याद रहेगा तो पुरुषार्थ में शायद सफलता मिलेगी। फिर बाबा ने कहा कई बच्चे बहुत खुश होते हैं कि हमने तो बहुत भाषण किए, बहुत सर्विस की है, लेकिन अब कौन सी सर्विस चाहिए? बेहद की सर्विस, मनसा वाचा कर्मणा तीनों में सर्विस, निरंतर एक सेकंड भी बिना सर्विस के ना गुजरे। उसके बाद फिर बाबा ने कहा अपने में शक क्यों करते हो कि पता नहीं पास होंगे या फेल होंगे, ये शक नहीं करना है। आप अपने आप को कहते क्या हो? होशियार स्टूडेंट। तो होशियार स्टूडेंट क्या कहते हैं? निश्चय से कहते हैं वो कि हम नंबर वन में आएंगे। अगर निश्चय नहीं है तो विजय भी नहीं मिलेगी, अगर निश्चय नहीं है तो सोचेंगे, निश्चय पक्का नहीं है तो सोचेंगे पता नहीं फेल होंगे पास होंगे। तो बाबा ने कहा अपने आप अपने में संशय नहीं रखना है, संशय का विकल्प नहीं उठना चाहिए। किस किस में? बाप में, दैवी परिवार में, बाप की नॉलेज में, इसमें संशय व विकल्प नहीं उठना चाहिए। अगर संशय विकल्प उठता तो भी क्या कहेंगे इसको? संशय बुद्धि कहेंगे, निश्चय नहीं कहेंगे। हम शिव बाबा के हैं तो फिर सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, तो फिर निश्चय की बात है, संशय की बात ही नहीं है। तो निश्चय बुद्धि होना, तो सर्वशक्तिवान के बच्चे तो सफलता तो है ही है साथ में, लेकिन बच्चे बार बार अपने आप में संशय के संकल्पों को, विकल्पों को मन बुद्धि में ले आते हैं, पता नहीं होगा। अगर ये सोचते हैं अभी ये होगी नहीं होगी तो फिर कर्म भी वैसा ही होगा, कर लेंगे हो जाएगा तो भी कर्म भी ढीला डाला होगा। अगर निश्चय पक्का है तो उसमें विजय सफलता मिलेगी मिलेगी। और संशय के संकल्प हैं तो अपने में कमजोरी और संशय की फीलिंग आती रहेगी। कमजोरी के संकल्प ही वास्तव में संशय है। संशय क्या चीज है? अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं है, विश्वास नहीं है, वही संशय है। तो संशय में रहेंगे तो फिर फीलिंग भी आएगी, कमजोर संकल्प रहेंगे। तो बाबा ने कहा अब कहां तक ये पुराने संकल्प, अब भाई वो बात कहां तक अभी पुराने संकल्प और पुराने संस्कार रहे हैं। पुराने संस्कार तो मोटी चीज है, लेकिन अभी संकल्प भी नहीं होने चाहिए। पुराने संकल्प कौन से? जिनको हम छोड़ चुके हैं, जो एक पिछले जन्म के हैं, इस जन्म के नहीं, ब्राह्मण जन्म के नहीं, शूद्र जन्म के हैं, तो वो संकल्प भी समाप्त, वो संकल्प नहीं आने चाहिए। फिर भट्ठी भी, तो बाबा ने कहा भट्ठी में क्या किया जाता है, भट्ठी में क्या क्या होता है? भट्ठी करते हैं तो परिवर्तन होता है, किसका? रूप का, गुण का, नाम भी परिवर्तन रहता है। एग्जाम्पल दिया जैसे मिट्टी है, पहले वो मिट्टी कहलाती है, उसके बाद भट्ठी में पकती है तो उसका रूप परिवर्तन रहता है, ईट, उसका फिर कर्तव्य बदल जाता है। तो ऐसे ही आप बच्चों ने भट्ठी की है तो आपका भी रूप बदला है। पहले कौन सा रूप था, अब कौन सा रूप है? पहले बगला रूप था, अभी हंस का रूप हो गया, और पहले साधारण थे, अभी महान आत्मा बन गए, रायल आत्मा बन गए। पहले हम लेने वाले थे, अभी देने वाले बन गए। तो माना पुरानी लाइफ और नई लाइफ कितना फर्क पड़ गया। तो भट्ठी कोई, जैसे कल भी जिक्र कर रहे थे ना, एक दिन की बात नहीं है, ये तो हमारा जीवन ही सदा काल के लिए भट्ठी में है। तो दिन प्रतिदिन हमारा रूप परिवर्तन हो रहा है, हमारे कर्तव्यों में श्रेष्ठ भाव आ रहा है, हमारे गुणों में बढ़ रहे हैं, गुणों से दूसरों को सुख दे रहे हैं। तो वो भट्ठी तो निरंतर हमारी चालू ही चालू है, अंत में इसकी आहुति डलेगी। तो भट्ठी वाली बात हुई। फिर बाबा ने कहा जो बच्चे उमंग में रहते हैं उनको बाप दादा की मदद भी मिलती है, लेकिन पहले उमंग में रहेंगे तो, अगर उमंग ही नहीं है, ठंडे ठाकुर है, तो मदद तो मिलेगी लेकिन हम कैश नहीं कर पाएंगे। जितना आप अपने में निश्चय रखेंगे उतना ही बाप दादा भी मददगार बनते हैं, और स्नेही को सहयोग अवश्य मिलता है। यहाँ फिर बाबा ने स्नेही को साथ में जोड़ दिया है कि जितना स्नेही होंगे उतना मदद मिलती है, स्नेही को सहयोग मांगने की जरूरत नहीं है। तो स्नेही किसके बनना है? सर 69 में जो पहले एक दूसरी या तीसरी मुरली, स्नेही पुरुषार्थ स्नेही बनो तो सबके स्नेही बन जाएंगे। तो पुरुषार्थ स्नेही बनने से सहयोग के मांगने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। वैसे भी देखने में आता है जो पुरुषार्थ करते रहते हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ज्ञान युग पढ़ाई में लगे हुए हैं, उनको सहयोग मिल ही जाता है किसी न किसी तरीके से, क्योंकि बाबा भी बंद गया है, बाबा को मालूम है अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उनका फिर दैवी परिवार से भी स्नेह रहता है, तो सहयोग किसी ना किसी तरीके से मौके पर वो मिल ही जाता है। तो मांगने की जरूरत नहीं है, स्नेह है तो सहयोग मिल ही जाएगा। बाप दादा के स्नेह ही परिवार के भी स्नेह ही, तो सबका सहयोग स्वतः ही प्राप्त होगा। तो मुख्य बाबा ने कहा दो बातें याद रखनी, एक तो निश्चय बुद्धि और दूसरा नष्टमोह। इस मुरली में नष्टमोह का जिक्र नहीं है, लेकिन जो पिछली मुरली थी उसमें नष्टमोह का जिक्र था। तो माताओं की भट्टी चल रही है तो नष्टमोह का इसमें, तो बाबा ने कहा ये तो तिलक जैसे माथे पर लगा हुआ है। फिर बाबा ने माताओं से बात की, माताओं का श्रृंगार किया। हाँ, माताओं को कहा ये स्लोगन याद रखना है, ये है माताओं की सजावट, कौन सी, निश्चय बुद्धि और नष्टमोह। तो सजावट जो है, कहा बाबा ने कि सबसे अच्छी सजावट किस चीज की होती है, रत्नों की। हाँ वो आगे आएगा, तीन 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 भी आएगा, बाबा मुझा देता कहीं दो कहीं तीन, होते एक जैसे ये आगे या पीछे पता नहीं चलता वो त्रिमूर्ति छाप, वो ठप्पा लगे आगे लगेगा। तो इसमें एक पढ़ने का दूसरा तरीका होना चाहिए, या तो सारी मुरली को अलग अलग करके दो तीन बातें कहाँ कहाँ कहीं वो सब इकट्ठा लिखी जाए, सर्विस के बारे में कहाँ कहाँ सब इकट्ठा किया जाए, तो फिर और कम बढ़ जाएगा, लेकिन याद करना आसान हो जाएगा। वो जैसे सर्विस के बारे में स्टार्टिंग में ही बात की, फिर बीच में की, फिर लास्ट में भी की है, तो अलग अलग बातें हो जाती है, फिर आदमी मूंज जाता है कहाँ क्या कहा, जो लास्ट में कहा उसको पहले बोल देगा और फिर वो सोचता रहेगा पता नहीं बीच में ना कहाँ हो गई तो मूंज जाती है। लेकिन चलो कहीं भी बोलो, ज्ञान तो अंदर ही जाना चाहिए
की सारी
मुरली में मूंजने की पूरी व्यवस्था ही बाबा ने कर रखी है, पूरी चाक चौबंद है वो तो यहाँ बाबा ने कहा माताओं की सजावट है दो बातों में, जो तिलक लगाया माथे पर तिलक लगा हुआ, निश्चय बुद्धि और नष्टमोह। तो सबसे अच्छा श्रृंगार कौन सा होता है, बाबा ने कहा रत्नों का। वैसे भी सोने में अगर रत्न जड़ दिए जाएं तो वो सोना जास्ती चमकता है और उसकी वो आकर्षित भी करता है। तो ऐसे ही माताओं को जो रत्न भट्टी में निकले, ज्ञान के भिन्न भिन्न पॉइंट, ज्ञान के भिन्न भिन्न पॉइंट बहुत सारे हो सकते हैं, वो भी एक चिंतन का विषय है कि कौन कौन से ऐसे पावरफुल पॉइंट हैं जो विघ्नों को सेकंड में खत्म कर दें, या जब भी कोई विघ्न आए तो वो पॉइंट हमारी बुद्धि में रहें। तो वो अपनी अपनी परिस्थितियों अनुसार हम सभी चिंतन कर सकते हैं, वो कभी भी कर सकते हैं। तो यहाँ बाबा ने कहा कि रत्न, तो रत्नों का श्रृंगार माताओं को निरंतर करके रखना है। जितना आप श्रृंगार करेंगे तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या कि हमारी तरफ देखो बाबा के समझाने का तरीका देखो कितना जबरदस्त। तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारी तरफ देखो, आपको दुनिया अपने आप देखेगी, आकर्षित करेंगे। तो ज्ञान रत्नों अच्छा अर्थात जो पीछे बाबा कहते हैं कहना और करना, ये दोनों बातें समान, तो इसी से संबंधित है कि ज्ञान रत्नों का श्रृंगार दूर वालों का ध्यान खिंचवाएगा, इसलिए इन रत्नों के श्रृंगार को सदा के लिए कायम रखेंगे ऐसा निश्चय करना है। तो यहाँ नष्टमोह की बात नहीं कही, निश्चय की बात की, नष्टमोह पिछली मुरली में रह गया। फिर बाबा ने अमृत वेले बाबा को वो बच्चे याद आए जो सब साकार में साथ रहते थे। क्यों याद आए, क्योंकि आजकल उनका उस समय, आजकल तो बहुत हाईएस्ट चल रहा है उनका, वो तो बासमानी बन गए अभी, तो उनका पुरुषार्थ बहुत अच्छा चल रहा है, वो पुरुषार्थ के स्नेह के कारण बच्चे बाप को याद आए। फिर बाबा ने मधुबन वालों को भी याद किया कि मधुबन वालों का भी पुरुषार्थ बहुत अच्छा चल रहा है, परिवर्तन अच्छा हुआ है, लेकिन अब देखेंगे कि क्या कि जो भी पुरुषार्थ किया है, जो भी अपने में परिवर्तन किया है, वो जब बाहर जाके सर्विस करेंगे उस सर्विस की क्या रिजल्ट होगी, एक एक रत्न जाकर कितनों को लाते हैं वो अब देखेंगे। तो ये बाबा ने रिजल्ट देखे उनकी। इसके बाद बाबा ने कहा कभी भी हिम्मतहीन नहीं बना, हिम्मतहीन दिल शिकस्त पुरुषार्थ में, हिम्मतहीन पुरुषार्थहीन हिम्मतहीन नहीं बना, अब जमाना चला गया। तो इस ब्राह्मण जीवन में कभी भी अगर हमें असफलता मिलती है तो किसी भी सूरत में असफल होने पर भी हमको दिल शिकस्त नहीं होना है, चाहे 100 प्रयास करने के बाद हमको दिखाई भी दे रहा है कि असफलता है, लेकिन हमारे बोल दिल शिकस्त नहीं निकलने चाहिए। अगर असफल होने के बाद हमने अपनी असफलता जाहिर कर दी, अपने को स्वीकार कर ली या दिल शिकस्त हो गए, और उसी भाव से अगर हमने वर्णन कर दिया तो सामने वाला भी हो सकता है दिल शिकस्त हो जाए। जैसे कई कभी कई बार सुनने में भी आता है कि आप लोग क्या करते रहते हैं इधर, इससे पंडित से थोड़ा नहीं कुछ होता है। एक बार कोई भाई पूछ रहा था मुझे कि आप क्या करते हैं इधर, तो हमने कहा मुरली पढ़ते हैं बाबा की। तो बोला मुरली से क्या होता है, मुरली पढ़ने से थोड़ा नहीं होता कुछ। अब नया जो होगा तो नया, अगर वो पुराना व्यक्ति था सुनने वाला पुराना भाई, तो अगर नया सुनेगा तो उसका क्या हाल होगा फिर, क्योंकि वो पुराना ही सुना रहा है, वो पुराना इतने सालों से होगा, और अगर अपना एक्सपीरियंस सुनाए तो नए का तो पहले दिल शिकस्त हो जाएगा बेचारा, क्योंकि नया तो पहले भी एकदम हिम्मतहीन है, दिल शिकस्त है, कमजोर है, तो शक्तिशाली कैसे बनेगा। तो किसी भी हालत में हमारे मुख से पुरुषार्थ इनके, हिम्मत इनके बोल नहीं निकलने चाहिए। योग लगे, बाबा ने कहा योग लगे नहीं लगे, आप बैठो जाके, अमृत वेले की बात किसी है। तो जिम्मेवारी बाबा की थी, लेकिन हिम्मत हमारी होनी चाहिए, बस लगे रहना। कम से कम संस्कार तो पढ़ रहे हैं जो उस दिन कहा था, तो हिम्मत इन वो भी है, लेकिन अभी वही व्यक्ति कहते हैं नहीं वही जाना चाहिए, और वो भी बीच बीच में कभी कभी आता है। क्योंकि लंबे समय के हमारा जो एक अभ्यास पड़ जाती है, आदत पड़ जाती, और हमारे चरित्र में अगर परिवर्तन दिखाई देता है, नेचुरली दूसरों को आकर्षित करेगा। जैसे बाबा ने कहा ना माताओं का श्रृंगार, तो श्रृंगार कौन सी चीज है, ज्ञानियों का श्रृंगार है। तो नेचुरली हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा तो अपने आप ही आकर्षण, और जाना का हट्टी तो एक ही है, और सारे ज्ञान का सार तो यही है पढ़ाई। इसलिए बाबा ने इस मुरली में जो 18 जनवरी में जो जिक्र किया टोटल पढ़ाई के ऊपर है, जबकि बताया ना कि अव्यक्त महीना, स्नेह का महीना। लेकिन क्योंकि वर्तमान समय मेजोरिटी यही नजर आता है कि पढ़ाई के ऊपर थोड़ा अटेंशन कम होता जा रहा है, साइंस के साधन संसाधन इतने सारे हावी होते जा रहे हैं कि उसमें हम यूज करते भी हमारे बुद्धि में थोड़ा क्लिक तो होता है कि हम जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो आदत इतनी पक्की पड़ गई है कि अच्छे संस्कारों को वो आदत दबा देती है, उसमें वो दबा देती नहीं कोई बात नहीं, 2 मिनट बाद कर लेंगे, और जब तक वो टाइम निकल जाता है। तो ये पढ़ाई पर पूरा फोकस होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा हाँ, तो कोई बच्चे समझते हैं कि अब बैज माना गया, अब तो मददगार बनना है, बनकर दिखाना है। अभी सबके अंदर में यही रहता है कि जल्दी जल्दी जाएं बाबा के साथ, कि जहां हमारा रहवर है वहीं के हमराही बने। रहवर माना ब्रह्मा बाबा को कहा गया यहाँ गाइड, तो वहीं के हमराही बने जहां बाबा चले गए। तो यहाँ बाबा कहते हैं पहले तो बच्चे सोचते थे संगम ही बहुत अच्छा है, संगम पर जितना जाते रहे उतना जाते अच्छा है, क्योंकि संगम के सुहेज थे। तो अभी तो वापस जाने का टाइम है। तो यहाँ वापस जाने की बात आई, फिर बाबा ने सर्विस की बात कर दी यहाँ, और सर्विस की पहले भी की थी इसलिए फिर ये बात याद आ जाती। तो बाबा ने कहा अभी आपकी सर्विस जो है वो चलन से, वाणी से ज्यादा चलन से होगी। तो इन दोनों से अगर ये डबल सर्विस करेंगे, वाणी के साथ चलन भी करेंगे, तो डबल सर्विस आपको डबल ताजदारी बना देगी। तो पूछा सिंगल ताजदारी बनना है डबल ताजदारी बनना है। फिर बाबा ने यहां शक्ति की बात कही कि शक्तिशाली कैसे बनेंगे, जितना अव्यक्त स्थिति में रहेंगे उतना स्थिति शक्तिशाली बनती जाएगी। तो बाबा ने कहा सारे दिन में जितना भी समय मिले अव्यक्त में रहते हुए, अव्यक्त में अव्यक्त स्थिति बनाकर व्यक्त में आते हुए कर्म करो, तो फिर शक्तिशाली बन जाएंगे। तो जितना भी समय मिले 1 सेकंड अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करो। सर्विस समाप्त हुई फिर अव्यक्त स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करना है, ऐसा समझना है, ऐसा करना है। फिर बात आ गई बलि चढ़ने की। तो जो बच्चे बलि चढ़ते हैं उनको बलि के रिटर्न में क्या मिलता है, ईश्वरीय बल, ईश्वरीय बल मिलता है। और जो बलि अर्थात स्वाहा, जो संपूर्ण स्वाहा होते हैं वो सदा सुहागिन होते हैं। तो यहाँ बाबा ने उसमें बात जोड़ दी, तो सुहागिनों की फिर निशानियां बताई, सुहागिनों की अर्थात एक तो बिंदी, आत्मिक स्वरूप की बिंदी, और दूसरा है कंगन। तो ये सदा कायम रखने हैं। वैसे भी देखो अगर कोई किसी का पति मरता है, तो पति मरता है उस समय पत्नी क्या करती है, सुहागिन जो होती है वो क्या करती है, अपनी बिंदी उतार के उसके ऊपर फेंक देती है, और जो बाजू में कंगन पहने होती है, चूड़ियां पहने होती है, उसको भी तोड़ देती है, तो सुहाग खत्म हो जाता है। तो यहाँ संगम का बाबा ने कहा कंगन जो है संगम के कंगन है। कंगन माना यहाँ स्मृतियों की बात है, संगम की जो स्मृतियां हैं, बाप का साथ है, ये स्मृति है और आत्मिक रूप की बिंदी है, तो इसको भूलना नहीं है। अगर इसको भूल गए तो सुहाग खत्म। तो यहाँ सुहाग की बात हुई, सुहाग संगम के कंगन उतार देने से सुहाग खत्म हो जाता है। फिर सर्विस की बात कर दी। अब सर्विस में कमाल करनी है। यहाँ सर्विस में कमाल कौन सी है, बड़ी सिंपल है। अभी ऐसा रंग लगाओ जो आपके रंग से दूसरों को भी रंग लग जाए। यहाँ फिर म्यूजियम की बात की, म्यूजियम बन के तैयार हो गया होगा तो म्यूजियम में सर्विस करने जाते होगे, तो बाबा ने कहा समझाते तो बहुत हो, वो समझ कर चले जाते हैं, लेकिन अभी अपने संग से ऐसा अविनाशी उनको रंग लगाओ जो कभी उतरे ना, उनको थोड़ा याद रह जाए। जैसे पहले पहले स्टार्टिंग में मुरली में कहा मुलाकात की बात, तो जो भी हमसे कोई मिलता है चाहे 2 सेकंड, 2 मिनट, 10 मिनट जितना भी मिलता है, तो उतने समय में हम उसको कुछ विशेष अनुभूति करा दे ताकि वो कभी भूले नहीं। मुझे याद आता है 4-5 महीने पहले एक भाई आया था, तो वो मुझे देख के दूर दूर से मुस्कुरा रहा है। एज था कोई, बहुत देर से मुस्कुराता रहा, अभी सामने वाला मुस्कुरा रहा है, हम भी तो मुस्कुराएंगे भाई, मुस्कुराते रहे अब। तो आखिर वो पास में आ गया तो कहता मुझे पहचाना, मतलब हाँ पहचाना मैंने तो, अब मैंने तो पहचाना ही नहीं था उसको, तो भी कैसे उसको मना करें क्योंकि इतने सारे लोग मिलते। मैंने पहचान लिया, मैंने आप गुप्ता जी लखनऊ से ना, बोला हाँ। तो हालांकि मुझे नाम तो मालूम नहीं, तो कैसे मालूम हो गया, क्योंकि उसके बैज पर लिखा था गुप्ता जी लखनऊ। तो वो इतना खुश हो गया, आज जब भी आता मिलेगा जरूर वो। तो वो उसने पता नहीं कब कैसे याद रखा होगा, कोई हेल्प की होगी या कुछ भी हुआ होगा, मुस्कुरा के मिले होंगे। तो बाबा ने यही कहा कि अपने संग का रंग ऐसा लग जाए जिससे दूसरों की दुख दर्द खत्म हो जाए। फिर इसके बाद कहा बाबा ने कि अभी जो समय है वो चलने का समय नहीं है, चलने का समय बीत गया, दौड़ने का समय बीत गया, अगर इस समय भी जंप लगाने का समय है, जंप लगाने के समय अगर चलते रहेंगे दौड़ते रहेंगे तो क्या होगा, टू लेट हो जाएंगे, तो अभी उस टाइम बीत गया, अभी जंप लगाने का समय है। फिर बाबा ने कहा एक रस अवस्था में रहने के लिए एक ही शुद्ध संकल्प रखना है, वो कौन सा, अभी 3 बातें बताई, एक तो स्नेही बनना, दूसरा सर्विसेबल, इसके बिना और कोई दूसरा संकल्प नहीं, सदा सर्विसेबल। यहां बताया त्रिमूर्ति ठप्पा लगाओ अपने पर, निश्चय बुद्धि, सर्विसेबल और नष्ट मोहा, ये त्रिमूर्ति ठप्पा लगाओ। इस त्रिमूर्ति शाप से ही आप समान औरों को भी ऊंच बनाना है, कम नहीं, हमसे ऊंचा कोई बने ये भी तो क्या है, अगर कोई हमसे ऊंचा बनता है ये तो अपनी ऊंचाई है, स्वयं की ऊंचाई है। अच्छा ओम शांति। अच्छा फिर से रिवाइज करें, हाँ 5 मिनट बाकी है, टाइम कम पड़ रहा है आज। तो इसमें मुरली में बाबा ने सबसे पहले तो मुलाकात की, 3 रूपों से बाबा ने पूछा, किस रूप से, स्नेह रूप से, अव्यक्ति रूप से या शक्ति रूप से। तो सारे दिन में जो बीच में लास्ट में बताया कि शक्तिशाली बनने के लिए अव्यक्त स्थिति में रहना है, तो बीच बीच में हम सारे दिन में अभ्यास कर सकते हैं जितना भी हो सके, 1 सेकंड में अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर, सूक्ष्म मतल में बैठे जैसे ब्रह्मा बाबा सामने से, ब्रह्मा बाबा की ब्रुक्टी से शिव बाबा की किरणें निकल रही हैं, या आंखों से लाइट निकल रही है और मुझे फरिश्ते में समा रही है, तो ये अभ्यास हो सकता है वहाँ। फिर उसके बाद सारे दिन में जो टाइम मिलता है तो ज्ञान के भिन्न भिन्न पॉइंट, जो पावरफुल पॉइंट हैं, जिन पॉइंट को अप्लाई करने से विघ्नों को हम जल्दी से जल्दी 1 सेकंड में पूरा कर सकें, समाप्त कर सकें, वो पॉइंट का हम सारे दिन में चिंतन कर सकते हैं। और फिर उस चिंतन का क्या अनुभव निकलता है, जैसे सार बताया कथनी करने में समानता, तो अगर उनको अप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है वो हम नोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद सर्विस किस तरीके से करनी, बाबा ने कहा जो बाहर वाले चाहते हैं कि अभी कहने से सर्विस नहीं होगी, करने से होगी, तो वो भी हम अपने आप को जांच कर सकते हैं कि हमारी कथनी करने में समानता है या नहीं है। मनसा पाचा कर्मणा, जो संकल्प हम करते हैं क्या वही प्रत्यक्ष में कर रहे हैं, अर्थात उनमें सच्चाई सफाई है, सफाई अर्थात हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई किचड़ा तो नहीं है, कोई नेगेटिव थॉट, कोई नेगेटिव किसी के प्रति वृत्ति है, दृष्टि वृत्ति कृति वो सफाई की है, तो वो भी जांच कर सकते हैं। उसके बाद फिर खौफनाक तो नहीं है, माना जो सोच रहे हैं वही कर रहे हैं, ये भी अपने आप जांच करनी है। फिर नेक्स्ट में श्रृंगार की बात भी है, ज्ञान रथों से अपने आप को कितना श्रृंगारा है, और संघ का रंग हम कितनों को कितना लगा रहे हैं, तो ये सारी बातें कुल मिला के ये करनी है। और कुछ इसमें जो सामान है वो भी कर सकते हैं।
ओम शांति। जो कहेंगे वो करेंगे। इसमें एक सूक्ष्म फिलॉसफी है कि अगर हमको कोई बात पता है कि ये करनी चाहिए, उसको कह देना, फिर जबरदस्ती करनी पड़ती है।
जबरदस्ती करना लेकिन मैच
हो रहा है। हाँ, मतलब अगर हमको पता है यही श्रीमत है और यही करना ही चाहिए और हम नहीं कर रहे, तो हम अगर किसी को कह दे कि ये तुमने करना चाहिए, अमृत वेले के बाद बिल्कुल सोना नहीं है, तो फिर वो हमको करना ही पड़ेगा, फिर वो थोड़ा सा हमारे ऊपर भी आ जाता है। मराठी में एक कहावत है, बोले तैसा साले त्याची वंदना पाउले, अंगे झाड़ी न अंगन त्याचे दायित्व करी न। संत कहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति, बोले तैसा साले, जो बोलता है वही करता है, ऐसा अगर कोई व्यक्ति है तो अंगे झाड़ी न अंगन, मैं अपने शरीर से उसका आंगन झाड़ूंगा। अंगे झाड़ी न त्याचे दायित्व करी न, उसका मैं दास बन जाऊंगा अगर ऐसा कोई व्यक्ति मुझे हो तो दिखा। तो इतनी उसकी महिमा है कि जो हम बोलते हैं वही करे। ये एक बहुत ही सूक्ष्म बात है। तो हमने जो जो बोला उसी को याद करना। यहाँ बैठकर क्लास में हमने जो सबको सुनाया, अभी खुद ही याद करो हमने क्या क्या बोला, क्योंकि उसका असर तभी पड़ेगा जब हम वो खुद कर रहे हैं। जब हम कर ही नहीं रहे और दूसरों को कह रहे हैं कि ये करो, ऐसे करो, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये श्रीमत है, वो श्रीमत है, तो हम ही उसका शिक्षा अपने स्वरूप से देनी है बनकर। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरा है जो है आत्मविश्वास, जो आपने बात कही ना अभी, स्वयं पर विश्वास। स्वामी विवेकानंद ने कहीं एक जगह लिखा है अपने अमेरिका के एक लेक्चर में, उन्होंने कहा है, इफ यू हैव फेथ इन 33 million gods, but if you have no faith in yourself, you cannot achieve success. अगर तुम्हें 33 crore देवी देवता है, उनमें विश्वास है, पर स्वयं में विश्वास नहीं है, तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो स्वयं में विश्वास ये बहुत बड़ी चीज है। इसमें अभिमान अहंकार की बात नहीं है। जो बाबा कह रहे हैं सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, हम सफल नहीं होंगे तो कौन होंगे, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, जो कल भी था नंबर वन, विन जो करेंगे वो नंबर वन। तो ये सारी जो बात है, स्वयं में विश्वास भरना, ये मैं कर सकता हूं। फिर उसमें क्यों, हाथ और साथ है, जो कल कहा था मुश्किल आसान हो जाएगी, बोझ उसको दे दो। तो ये सारी जो बातें है, कोई भी चीज हमारे सामने है तो अपने अंदर एक विश्वास जागृत करना है कि ये मैं कर सकता हूं, मुझमें शक्ति है, जो संकल्प हम करेंगे वो सिद्ध होगा, मेरा एक एक संकल्प बीज है और वो इतना शक्तिशाली है कि अगर मैं संकल्प कर लूं तो वो होना ही है, चाहे वो कितनी ही असंभव बात हो। बिफोर मी माउंटेन्स विल क्रम्बल, आई विल ड्रिंक द एंटायर ओशन, किसने कहा है कि मैं पूरा समुद्र पी जाऊंगा, मेरे सामने सारे जो पर्वत है वो गिर जाएंगे, इतना अपने अंदर विश्वास, इतना आत्मविश्वास, फेथ। हाँ, दशरथ मान जी की तरह। तो कोई भी कार्य हम करें इतना दृढ़ता से करें, दृढ़ता में भी दृढ़ता, निश्चय में निश्चय, सारी दुनिया चली जाए हम अकेले रहे तो भी हम डगमग ना हो, सारी दुनिया कहे कि ये मार्ग गलत है, परंतु इसी मार्ग पर चलना, क्योंकि यही सत्य है, और जो सत्य का मार्ग है उसमें भीड़ कम होती है, इसके लिए इसी मार्ग पर चलना है। संसार का भी मार्ग है, ये भी मार्ग है, परंतु ये जो तीव्र पुरुषार्थ का मार्ग है, इसमें अंततो गत्वा आत्मा हीरा बन जाएगी, जो अनेक आत्माओं को प्रकाश देगी, प्रकाशित करेगी। मार्ग बहुत कठिन है, दुभर है, परंतु उसका जो परिणति है, परिणाम है, वो बहुत ही सुखद है। पहले तो विष के जैसा है, ये भी कह सकते हैं, और जो संसार का मार्ग है या जो अलबेलेपन का मार्ग है, उसमें पहले सुख है, परंतु उसकी जो निष्पत्ति है वो दुख है, इसके लिए इस मार्ग पर चलना है। ओम शांति। कल किसका है? तो कहीं ना।